हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधिक के कॉल आने के बाद से आंशी रोए जा रही थी, तो वही विधिक से मीटिंग खत्म होते ही अमन तुरंत आंशी के पास आ गया। जैसे ही अमन अंदर आया, उसने आंशी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर उसके पास गया। अंदर जाकर अमन ने देखा आंशी के पैरों से खून निकल रहा था और वो रोए जा रही थी। आंशी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अमन ने बौड़कर उसे गले लगा लिया और सहलाने लगा। आंशी डर के मारे कांप रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, वो सबको मार देगा। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अमन, उसने दादी का एक्सीडेंट करवा दिया। मेरी दादी मर रही है, मुझे उनके पास जाना है। तुम किसकी बात कर रही हो आंशी? और किसी को कुछ नहीं हुआ है? क्या मेरे जाने के बाद कोई आया था यहाँ पर? और ये खून क्यों निकल रहा है? अमन आंशी से अलग हुआ और उसको पैर को देखते हुए बोला। आंशी की हालत देखकर एक पल के लिए वो भी घबरा गया था। कोई नहीं आया, तुमने कहा था कि मेरे जाने के बाद टीवी देख लेना। मैंने टीवी में न्यूज़ देखी, उसमें मैंने देखा दादी का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उनको कॉल करने के लिए अपना मोबाइल ऑन किया तो मेरे पास विधिक का कॉल आया। उसने ये सब किया है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको मार देगा। उसे ये भी पता है कि पापा पहले एक एजेंट थे। अमन, वो तुम्हें भी मार देगा, वो सबको नुकसान पहुँचा देगा। प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो, आंशी रोते हुए बोली। वो उठकर जाने को हुई, तभी उसके पैर में दर्द हुआ तो वो जोर से चिल्लाई। अमन कुछ पल के लिए चुप हो गया और सारी बातें गौर से सोचने लगा। फिर उसने तुरंत ही कहा, तुम आओ मेरे पास, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कर देगा अमन, उसने कर दिया है, उसने मेरी दादी का एक्सीडेंट करवा दिया है। आंशी एक ही बात की रट लगाए हुई थी। अमन ने उसे पकड़ कर बैठाया। तुम यहीं रहना, मैं बस एक मिनट में आया, बोलकर अमन तेज कदमों से चलकर अपने रूम में गया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस आकर आंशी के पैर पर मलहम लगाने लगा। तुम सबसे पहले काम डाउन करो, विधिक ने कुछ नहीं किया है और ना ही वो करने वाला है। थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ मीटिंग में था, तभी मैं बाहर गया था। मीटिंग के बीच उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। आई थिंक इस बीच उसने तुमसे बात की होगी। आंशी की ड्रेसिंग करते हुए अमन उसे प्यार से समझा रहा था। मैं ये कब कह रही हूँ कि सब उसने खुद किया है? तुम जानते हो ना उसके कितने सारे आदमी हैं, उनमें से किसी से कुछ करवाया होगा। मैं अपनी वजह से अब और लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, आंशी ने मायूस स्वर में जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और शांत लहजे में कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारी फैमिली मुझसे अलग है आंशी? तुम्हारी सिक्योरिटी के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हारी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को देखा था। रुको, तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा, बोलते हुए अमन ने अपना मोबाइल निकाला और मिस्टर जिंदल को कॉल किया। उनका कॉल स्पीकर पर था ताकि आंशी सारी बातें सुन सके और अपने दिल के डर को दूर कर सके। एक दो रिंग बजने के बाद मिस्टर जिंदल ने कॉल उठाकर कहा, तो कैसी रही तुम्हारी आज की मीटिंग? आई होप उसने मीटिंग के आड़ में कुछ गलत नहीं किया होगा। विधिक से मीटिंग करने से पहले अमन ने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी उसके कॉल आने पर मिस्टर जिंदल ने सबसे पहले मीटिंग के बारे में पूछा। सब ठीक था, वो आप ऑफिस में ही सेटल हैं या घर भी जा रहे हैं? अमन ने हिचकिचाते हुए पूछा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? इतना टेंशन का माहौल चल रहा है, ऊपर से सिक्योरिटी के लिए बिजी और अर्जुन को भी घर से हटना पड़ा। मिस्टर जिंदल काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने थोड़ा रुखे तरीके से जवाब दिया। क्या आपकी उनसे बात होती है? आई मीन, आर यू श्योर वो सेफ हैं? आंशी के लिए अमन बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहा था। उसके बार बार एक ही चीज पूछने पर इस बार मिस्टर जिंदल ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुमने ही तो उन्हें यहाँ से दूर भेजा था, मुझसे बेहतर तुम्हें पता होगा वो कितने सेफ हैं। ऊपर से सिक्योरिटी भी उनकी हाई करवा रखी है। मुझे काम करने दो, तुम्हारे फालतू के सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास, कहकर मिस्टर जिंदल ने कॉल कट कर दिया। अगर अभी भी तुम्हारे दिल में कोई शक है तो मैं उन्हें कॉल करके कन्फर्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहता, अमन ने आंशी से पूछा। मैंने अपनी आंखों से टीवी में न्यूज़ देखी थी और दादी की फोटो भी, वो कैसे झूठ हो सकती है? आंशी ने रोते हुए कहा। उसका दिल चाहकर भी अमन पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आंशी की तसल्ली के लिए अमन ने न्यूज़ चैनल लगाया। न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर एक्सीडेंट होने वाली औरत की गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए माफ़ी मांग रहा था। वो न्यूज़ देखने के बाद आंशी को राहत महसूस हुई। उसने मायूसी से अमन की तरफ देखा तो अमन ने उसे फिर से गले लगा लिया और सहलाते हुए कहा, अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो वो सच में कुछ ना कुछ कर देगा। सृष्टि, प्रिंस और हैरी को खोने के बाद मैं अपने किसी दोस्त या फैमिली को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। हो सकता है उसने इस बार कुछ नहीं किया होगा, पर आगे तो कर सकता है ना, आंशी ने जवाब दिया। डर की वजह से उसे बुखार हो गया था जिसे अमन अच्छे से फील कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे स्ट्रांग बनाऊं। तुम्हें समझना होगा आंशी, तुम उसकी कमजोरी हो। तुम तो खुद को ही कमजोर समझ रही हो। तुम एकमात्र वो इंसान हो जो विधिक राणा जैसे शैतान को बर्बाद कर सकती है। अमन अपनी बातों से आंशी को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैं उसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? वो खुद इतना पावरफुल है। वो मेरे अपनों को खत्म कर देगा। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी का वो फायदा उठा रहा है। तो आज़ाद हो जाओ अपनी हर एक उस कमजोरी से जो तुम्हें विधिक राणा को बर्बाद करने से रोकती है, जो तुम्हें कमजोर बनाती है, अमन ने आंशी से अलग होकर कहा। तो तुम भी वही चाहते हो जो वो करने को कह रहा है? तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली से अलग होकर उसके पास चली जाऊं? आंशी ने रोते हुए पूछा। अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली कमजोर बनाते हैं तो हाँ, अगर तुम्हें मुझे लेकर अपने दिल में डर है तो हाँ, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दो, शायद फिर तुम्हें कभी विधिक डरा ही ना पाए। अमन आंशी को जो समझाना चाहता था वो उसे चाहकर भी नहीं समझ रही थी। उस वक्त उसे अपनी फैमिली और प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। आंशी ने अमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। उसने कमरा अंदर से बंद रखा था और जोर जोर से रो रही थी। पहले मैं नहीं चाहता था कि तुम उसका सामना करो, पर हाँ, अब तुम्हें उसके पास जाना होगा। आंशी, जिंदगी भर तुम विधिक राणा के डर से नहीं निकल सकती। उससे दूर हो गई फिर भी नहीं। अमन के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। आंशी के रोने की आवाज कम हो गई थी तो अमन किचन में जाकर उनके लिए खाना बनाने लगा। इस वक्त उसे आंशी को काम करने के लिए यही सही लगा। दूसरी तरफ विधिक अपने होटल में शाहिद के साथ मौजूद था। दोनों आज के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विधिक के हाव भाव देखकर शाहिद समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है, बस पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपने उसकी दादी को मारा क्यों नहीं? आज नहीं तो कल उसे सच का पता लग ही जाएगा। ऐसे में वो आपके पास वापस नहीं आई तो? शाहिद ने हैरानी जताते हुए पूछा।
तुम्हें ये चीज अभी समझ नहीं आएगी शाहिद, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कई बार कुछ बड़ा करने के लिए किसी को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं होता, बस उसकी धमकी ही काफी होती है। उसकी बात का जवाब देकर विधिक वहां से चला गया। जबकि शाहिद अभी भी उलझन में वहां खड़ा था। उसने ऐसा क्यों किया, उसे समझ नहीं आ रहा था। 4004। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विधिक ने ऐसा क्यों किया होगा?